الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا آخری عشرہ دیکھنا نصیب فرمایا. اسی میں ایک رات لیلۃ القدر ہے، اور اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ایک تو فضیلت آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، اور اسی طرح دنیا سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور اس سے بھی بڑھ کے ایک اور بات یہ ہے کہ یہ رات وہ ہے جس میں ہزار مہینوں کی عبادت بھی کی جائے مسلسل، تو اس سے بھی بہتر یہ ایک رات ہے. اور تیسری بہت اہم بات یہ کہ اس رات میں آنے والے سال کے تمام احکامات فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. یعنی فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کام فلاں بندے کے ساتھ ایسے کرنا. اس رات میں اگلے سال جتنے لوگوں کو موت آنی ہے ان کی بھی پوری لسٹ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. بعض دفعہ دنیا میں انسان غفلت میں ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ آسمان پہ اس کے وارنٹ جاری ہو گئے، اس کی موت کا حکم صادر ہو چکا ہے، جہاں کوئی اپیل نہیں ہے. اور ابن عباس سورہ دخان کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے ان سب چیزوں کو نقل کیا جاتا ہے جو اس سال میں ہونے والی ہیں، کہ اتنا رزق فلاں کو دیا جائے گا، فلاں فلاں پیدا ہوگا، فلاں مرے گا، اتنی بارش ہوگی، حتیٰ کہ یہ بھی فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اس سال فلاں فلاں شخص حج کو جائے گا. آپ دیکھیں کہ بہت سارے ہمارے ساتھی پچھلے سال رمضان میں تھے اور اس سال نہیں ہیں. ہماری ایک بہن وہ رمضان میں ہمارا یہ پروگرام سنتی تھی، اور رمضان کے ختم ہونے کے شاید ایک آدھ مہینے بعد ہی ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس میں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. اور ان کے بچوں نے بتایا کہ وہ بڑے شوق سے انہوں نے اس رمضان میں یہ پروگرام سنا تھا. تو دیکھیں، کچھ پتہ نہیں ہے کسی کا کہ کس کا نام اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ریلیز ہوتا ہے کہ وہ اس سال کے بعد دوبارہ کبھی رمضان نہیں دیکھے گا. انسان بازاروں میں چل پھر رہا ہوتا ہے، گپ شپ کر رہا ہوتا ہے، اور دیکھو اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے. تمام سال کی بھلائی برائی، روزی، موت، تکلیفیں، یہ سب چیزیں دے دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ یہ آدمی دنیا میں نکاح کرتا ہے اور وہ بھی لکھا جاتا ہے، اس کے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے، وہ یہاں پہ خوشیاں منا رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ پھر بھی مردوں میں اس کا نام ہوتا ہے. تو جس انسان کو یہ پتا ہو، اللہ اکبر، کہ آج رات میں یہ فیصلے دیے جانے ہیں، بتائیں وہ کبھی سو سکتا ہے؟ وہ کبھی بے پرواہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس رات کو بہت سوچ سمجھ کے گزارنا، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ گزارنا. جو لیلۃ القدر ہے، اس کے بارے میں ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ رات آخری عشرے میں، یعنی آخری عشرے میں اگر جمعے کو تاک رات آ جائے، تو کافی چانس ہوتا ہے کہ وہی لیلۃ القدر ہو. کنفرم پھر بھی نہیں ہے، مگر جمعہ چونکہ خود اٹ سیلف ایک افضل ترین دن ہے، اور اس کی رات یہی ہے جس میں ہم ابھی بات کر رہے ہیں، تو جمعے کی رات بھی ہے اور تاک رات بھی ہے، تو بہت زیادہ چانس ہے اس کا کہ اس میں لیلۃ القدر ہو جائے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بات بڑھائیں، میں آپ سب سے کہوں گی، اگر آپ میں سے کسی نے بھی کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہوا، तो मसलन घर में किसी के साथ झगड़ा हुआ हुआ, तो याद रखिएगा झगड़े की वजह से ही ये रात उठा ली गई थी, इसका इल्म उठा लिया गया कि कौन सी है ये रात। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने के लिए आ रहे थे, लेकिन दो मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, तो फरमाया कि मैं तुम्हें बताने आ रहा था और मुझे बुला दी गई। अब अल्लाह ताला दोबारा भी तो बता सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको पोशीदा रखना था। फिर ये क्यों कराया कि एक दफा बता के फिर उसके बाद उठाया, बाद में भी जिब्राइल अलैहि सलाम आके बता बता देते, कोई मुश्किल तो नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने भुलवा देना था और हमें ये बात समझानी थी कि देखो जो झगड़ा है ना, लड़ाई झगड़ा, इससे इंसान खैर से महरूम हो जाता है, भलाई उठ जाती है, बरकत खत्म हो जाती है लड़ाई झगड़ों की वजह से। लिहाजा अगर किसी ने लड़ाई झगड़ा किया हुआ है तो छोड़ दे, सुलह कर ले। और अगर हमारे साथ कोई भी ऐसा बैठा हुआ है जिसने अपने वालदैन को नाराज किया हुआ, उनके दिल को दुखी किया हुआ, तो चाहे सारी रात दुआएं करते रहेंगे कबूल नहीं होनी। पहले फौरन अपने वालदैन को राजी करें। और अभी भी हमारे पास चांस है कि हम वालदैन को मना लें और उनको खुश कर दें ताकि हमारी बख्शिश हो जाए। तो इस रात के अंदर हमने अगर अपनी माफी चाहनी है और अगर हमें ये है कि हमें खुद माफी मिल जाए, तो वालदैन के दिल को खुश कीजिए। और अगर मैंने आपको बताया था, दोबारा रिमाइंड करा देती हूँ, अगर आपके घर में कोई पिक्चर्स हैं दीवारों पे लगी हुई किसी भी लिविंग थिंग की, जानदारों की, अपनी लगाई हुई है, अपनी शादियों की लगाई, उतार दे उनको। रहमत के फरिश्ते नहीं आने अगर आपके घर में ये तस्वीरें लगी हैं। इसी तरह कोई डेकोरेशन में बुत रखे हुए हैं, हटा दे उनको, वरना ये रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, कोई ऐसा नहीं है कि ये खुद ही बनाई हुई है बातें किसी ने। ये रात जैसे मैंने आपको बताया 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर, और कल आपको बता चुकी हूँ कि ये 83+ ईयर्स की इबादत बनती है 1000 महीने, उससे अफजल है, उसकी इक्वल नहीं है, उससे बढ़ के है। तो एक रात इज इक्वल टू 83+ ईयर्स। उसके लिहाज से जब हिसाब किताब रखने वाले निकाल लेते ना हिसाब, तो उस लिहाज से अगर एक रात इतनी बनती है तो 1 घंटा कितना बनता है? तकरीबन 10 साल की इबादत से भी ज्यादा, क्योंकि ज्यादा है ना, 83+ ईयर्स है। तो 1 घंटा इस रात का समझ ले 10 साल की इबादत से ज्यादा है, और 1 मिनट 58 डेज की इबादत से ज्यादा बेहतर है, और 1 सेकेंड जो है ना, 1 सेकेंड, कितने ही सेकेंड और कितने ही मिनट अगर हम गंवा रहे हैं, सोच लें 1 सेकेंड 23 आवर्स से ज्यादा की इबादत से बेहतर है। 23 आवर्स अगर आप पूरा, यानी दिन अगर आप इबादत करते रहें, उससे भी ज्यादा बेहतर है 1 1 सेकेंड की इबादत। तो ये एक रात नहीं है, ये एक खजाना है, जिसको मिल गया वो माला माल हो गया। सोचें किसी इंसान को कह दिया जाए कि बादशाह ने तुझे मजदूरी पे रखना है, और हर सेकंड में वो तुझे लाखों रुपए देगा हर सेकंड के, तो क्या वो अपना कोई सेकंड जाया करेगा? उसकी ख्वाहिश ये होगी कि रात कभी खत्म ही ना हो। तो खाना पीना, ये बातें, गपशप करना, सोशल मीडिया, ये तो फिर भी मिल जाएगा, अगर हो सकता है ये रात दोबारा ना मिले, ये रात ना दोबारा आए। तो इस रात की कदर करें। ये आजकल मस्जिदों में भी बहुत मेलों ठेलों का रिवाज हो गया है, बस खाना पीना चल रहा है, गपशप चल रही है, और लोग ये समझते हैं कि बस ये जागने की रात है। यानी ऐसे लगता है जैसे कंपटीशन जागने का है। ये जागने का कंपटीशन तो नहीं है, ये तो इबादत में भागने का कंपटीशन है। ठीक है, तो इबादत करनी है इसमें, सिर्फ जागना नहीं है। जाग तो एक किसी जगह पे सिक्योरिटी गार्ड भी जागता है इस रात में, तो उसको थोड़ी अजर मिल जाएगा। लिहाजा इसमें ये सोचें कि हमने करना क्या है। और आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि या रसूलल्लाह अगर मुझे ये रात मिल जाती है तो मैं क्या करूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया, आयशा इस रात के अंदर अपने लिए औलाद मांग लेना, इस रात में मुसलमानों के लिए फतह मांग लेना, इस रात में ये चीज मांग लेना, या कोई दौलत मांग लेना, बड़ा घर मांग लेना, बल्कि क्या फरमाया, ये दुआ करना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन तुहिब्बुल अफ्वा फाफू अन्नी, ए अल्लाह तू माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, हमें माफ कर दे। अफवन ना कहेंगे तो हम सबको माफ कर दे, अफवान नहीं कहेंगे तो मुझे माफ कर दे। इब्ने कय्यम फरमाते हैं, जब तुम दुआ करो लेकिन तुम्हारे पास वक्त कम हो और तुम्हारे दिल में जरूरियात का एक हुजूम हो, यानी इतनी सारी तुम्हारी जरूरियात हैं, इतनी सारी दुआएं हैं लेकिन वक्त कम है, तो तुम अपनी हर दुआ ये बना लो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन तुहिब्बुल अफ्वा फाफू, ताकि अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर दे। क्योंकि अगर उसने माफ कर दिया ना, तुम बिन मांगे ही तुम्हारी जरूरियात पूरी हो जाएंगी। तो लिहाजा इस दुआ को अपने सजदों में मांगे। अब फर्ज है, नफल है, जो भी सजदा कर रहे हैं उसकी तस्बीह करने के बाद फिर ये दुआ करें। आफू का माना क्या होता है? आफ का मतलब है यानी बदन में आफ, दीन में आफ, बदला देने में आफ, नहीं इजाफा और बरकत। ये अल्लाह जैसे बदन में अल्लाह बीमारियों से महफूज रखना, शिफा देना, दीन में आफ के नेकी कामों की तौफीक देना, और इबादात में, इतात में, और आखरत के लिए जो आमाल है उनकी तौफीक देना। बदला देने में आफू क्या है कि माफी का मिल जाना, गुनाहों का मिट जाना, बख्शिश मिल जाना। माल में आफू क्या है यानी अल्लाह जरूरियात से ज्यादा देना। तो अल्लाह ताला का आफ ये है कि तुम जो भी मांग रहे हो ना, वो भी अता करे, अच्छा तुमने नहीं मांगा वो भी अता कर दे। तो ये इंसान को हर चीज से बेनियाज कर देने वाली दुआ है कि ये मांग लिया तो सब मांग लिया। लिहाजा इस दुआ को जरूर मांगे, इस दुआ को जरूर अपनी दुआओं में शामिल रखें। और अफ और मगफिरत में क्या फर्क है? मगफिरत कि अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारे गुनाह माफ कर दे लेकिन वो तुम्हारे आमाल नामे में लिखे भी रहे। और अफ क्या है? गुनाह की माफी तो हो जाए, साथ साथ इसको तुम्हारे आमाल नामे से भी मिटा दे। उस गुनाह को तुम देखो ही नहीं ऐसे कि जैसे वो कभी गुनाह किया ही नहीं था, तो कितनी बड़ी बात है। लिहाजा इस दुआ को मांगते ही जाएं, मांगते ही जाएं, और इस दुआ को मांगने से ना थकें कि उसमें सारी खैर आ गई, सारी भलाई आ गई। इस रात में इस दुआ की कसरत करें, और बल्कि पूरे अशरे में इस दुआ की कसरत करनी है हमने। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इस रात की बरकतें समेट सकें।
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.